ओम शांति। कैसा रहा बाबा का मिलन? बाबा की हर मुरली से हमें अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ ना कुछ सीखना होता है। ये न हो कि वहां बहुत आनंद आए और बाद में कुछ नहीं। हर मुरली से जो ऐसी बाबा की विशेष चलती हैं, कम से कम एक और जितनी जो करे उतनी कुछ सुंदर बात सीख लेनी है, क्योंकि बाबा का कार्य सूक्ष्म रूप लेता जाएगा, समय की रफ्तार किसी की समझ में नहीं आएगी। समय काल चक्र, यह ऐसा चक्र है, कौन समझ सकते हैं इसको? बोलो। जो काल से परे ज्यादा समय रहते हैं, कहाँ है काल से परे? परम धाम, जहां समय नहीं है। समय तेजी से अब करवट बदलेगा और बाबा की हम सबको पालना बहुत सुंदर मिल रही है और मिलती रहेगी। कई लोग प्रश्न पूछा करते हैं, बाबा नहीं आ रहे, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया क्या? कई टीचर बहनों ने मेरे से इसी टर्न में पूछा बाबा के, श्री कृष्ण कलयुग की तमो प्रधान दुनिया में आ जाएगा? प्रकृति के तत्व उसके शरीर को निर्माण करने के योग्य कहाँ है? पतित धरती पर देवताओं के कदम नहीं पड़ते, देवताओं को पतित आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये कुछ रहस्य है। कोई भी देवता यहाँ जन्म नहीं लेगा, सब कुछ स्वच्छ होगा। बाबा का कार्य पूरा 100 साल चलेगा, साकार अव्यक्त ऊपर से। ऊपर समझ गए ना? सूक्ष्म लोक में रहकर बाबा, दोनों बाबा, ब्रह्मा क्रिएटर है ना? इस बात को अच्छी तरह समझना है। सारे काम शिव बाबा उनके द्वारा कराता है, इसलिए जब तक राज्य स्थापित ना हो जाए, जब तक हम सभी कर्मातीत ना हो जाएं, तब तक उनका कार्य चलता ही रहेगा। इसलिए कोई भी किसी कंफ्यूजन में ना हो। एक बात और कह देता हूं, ये जाननी बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा के समय से भी ये माया आती रही थी, बीच में बाबा ने ध्यान का पाठ ही बंद किया, बंद हुई ये माया, फिर चालू है। 8 जगह बाबा आ रहे हैं आजकल, संख्या बढ़ रही है। हर एक कहता है बाबा मेरे पास ही आ रहा, तुम सब बुद्धू हो, संशय बुद्धि हो, अकल नहीं तुम्हें, हम आनंद ले रहे हैं प्रभु मिलन का। भगवान ब्रह्मा के तन में ही क्यों आया? केवल ये रहस्य नहीं कि वो श्री कृष्ण की आत्मा है, पर उसी का ब्रेन मस्तिष्क सर्वशक्तिवान जैसी सत्ता को अपने में संभालने के योग्य है। बाकी का सिर तो फट जाएगा। हमने देखा होगा माताएं बैठी हैं, गांव गांव में देवियां आया करती हैं। आती है आपके गांव में भी? सिर कैसे होता है? एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ आके बैठ गई, शरीर एक है, ब्रेन एक है, वो भी सहन नहीं कर पाता, कंट्रोल नहीं कर पाता। भगवान सर्वशक्तिवान ऐसे केतन में आ जाएगा, संपूर्ण पवित्रता के बल से संपन्न आत्माएं, बहुत शक्तिशाली आत्माओं का ब्रेन ही उसको समा सकता, अपने में धारण कर सकता है। बाबा के शब्द हैं, इसलिए इन सब भ्रमों से भ्रमित नहीं होना। माताएं जल्दी हो जाती, हाँ मधुबन में जाते थे बाबा से मिलने, वहां तो आता नहीं, इधर ही आ रहा है, मजा आ गया अपना तो। ये भटकती आत्माएं हैं सब। ज्ञान वाले भी कुछ भटक रहे जिन्होंने ऐसे वैसे शरीर छोड़ दिया है, इसलिए। और दूसरी बात भी मैं कहता हूं, मान लो बाबा कहीं आ भी जाए, इनमें नहीं आ रहा किसी में भी, ये भ्रम है, धोखा है पूरा, संशय निश्चय की परीक्षा है। मान लो बाबा कहीं आ भी जाए और हमसे मिल भी ले, जब तक हम अपनी तपस्या नहीं करेंगे बाबा का मिलन भी हमें कुछ देगा नहीं। सच्ची बात है या नहीं बोलो। हमने कितनों को देखा, एक को नहीं हजारों, बाबा के समीप रहे, 10 बार मिले छोड़ के चले गए, बिल्कुल पास ही रहे स्टेज पे, दृष्टि लेते रहे, कुछ नहीं पाया, खाली डब्बे। इसलिए इन चीजों में भ्रमित नहीं होना। मैं जरा क्लियर बोल देता हूँ, माताओं को बड़ा आनंद आ जाता है, हमारे पड़ोस में ही भगवान आ रहे हैं। नहीं, मुरली इसमें सबसे गहरी बात थी। अब जो गहरे पुरुषार्थ हैं उनके लिए मालिक योग्य और शक्तिशाली हो, बोलो आगे किसी को याद है, ऐसा हो नहीं सकता कि मन न माने, कंट्रोल में न रहे। दो शब्द हैं, योग्य और, बोलो योग्य और, ठीक है। लौकिक में भी आप देख लो, कहीं भी कोई बड़ा अधिकारी अहंकारी यदि है तो उसके दबाव में लोग काम तो कर लेंगे पर सच्चा सहयोग नहीं होगा, उसको भी टेंशन होने लगेगी। फिर हमारा है स्वमान और योग्यताएं। योग्यताओं से क्या होता है, दूसरों के मन में हमारे लिए सम्मान हो जाता है, फिर सब कुछ मानना सहज होता है। मन हमारी शक्ति है, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ और मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये दो अनुभव ज्यादा करने हैं। और तब मन को ऑर्डर देना है तो पता चलेगा कि मन हमारी हर बात मानता है, सुनता है। हम कहेंगे ना ये सोचना बंद करो, जैसे मालिक ने ऑर्डर कर दिया बंद करेगा। इधर उधर तुम्हें नहीं भागना है इच्छाओं के पीछे, अब सब कुछ समेट के एकाग्र हो जाओ, मन स्वीकार करेगा, ठीक है। इस पे चिंतन करना से भी योग्य हो मालिक, माँ बाप भी अगर योग्य हैं तो बच्चे सम्मान करेंगे, और योग्य नहीं है आपस में लड़ते हैं दोनों, बच्चे देखेंगे तो जरूर ना सम्मान कम होता जाएगा, ऑटोमेटिक है ये बात। दूसरी पहली बात थी नए दिन के साथ और किसकी मुबारक दी बाबा ने, नव युग की, और बाबा हमें वहां ले चले। हम सभी को ये बात अब से प्रैक्टिस में लानी है कि रोज एक बार हम वहां चला करें। जब सभी ब्राह्मण आत्माएं अपने देव युग में, अपने देव स्वरूप में रोज पहुंचेंगे तो इसका अर्थ होगा उस युग का आह्वान करना, और महानात्माओं के आह्वान से वो समय तेजी से आएगा। जिनके आह्वान से भगवान भी आ जाता है, उनके आह्वान से स्वर्ग भी आएगा, ये धारा देव स्वरूप भी लेगी। तो वहां चला करें, चलेंगे, देखो क्या करेंगे, बस सीन सामने लाओ, सतयुग का संसार। मैं एक उदाहरण दे देता हूं, जहां जहां से भी आप आए हैं, गांव टाउन या शहर, उसको अपने सामने लाओ। कहीं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, रात का सीन देखो, सड़कों पे सुंदर लाइट पिलर्स पे जल रही हैं, रिमझिम है बहुत अच्छी, कहीं छोटे मकान हैं, कहीं खुले खुले मकान। अभी भारत में किसी किसी टाउन में खुले खुले मकान है, एक ही मंजिल, अभी हम कहीं गए थे मुझे भूल गया, एक मंजिल के मकान, उसमें भी खुले खुले। आ गया सामने अपना अपना गांव शहर, ऐसे ही सतयुग, दूर दूर तक सोने के चमकते महल, बड़े बड़े घर ऐसे छोटे नहीं होंगे, ये भाई 100 बाई 100 में बनाना है, बहुत महंगा है, बॉम्बे में तो 5 करोड़ में मिलता है, ये नहीं। कितना बड़ा होगा घर, आपका माता जी सतयुग में, बोलो हैं? कम से कम 1 किलोमीटर का, क्योंकि उसी में खाने पीने के सामान, तालाब, पुष्प विमान रखने की जगह, गाय, भैंस तो होंगी नहीं, गाय सब उसी में होगा, खुला है। इसी को बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। अब सोचो 9 लाख तो लोग हैं ना, परिवार तो थोड़े ही हो गए ना, 2-3 लाख परिवारों को घर बनाने हो। दिल्ली में देखो कितनी जनसंख्या हो गई विवेक भाई, तो भी मकान ऊंचे बड़े भी और छोटे भी सब है ना। अब 9 लाख को तो बहुत बड़े एरिया में रहना है भारत में, ऐसे नहीं दिल्ली दिल्ली में रहेंगे, साउथ का हिस्सा छोड़ दो, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का थोड़ा थोड़ा छोड़ दो, तो आधे से थोड़ा कम भारत तो बचेगा ना, जहां देवता बसेंगे शुरू में। तो घर बड़े बड़े और सोने के, किसी किसी के चांदी के होंगे, किसके होंगे चांदी के, हेलो। एक हंसी की कहानी सुना देता हूँ, किसी ने मुझे सुनाई थी कि एक माता को स्वप्न आया, वो थी थोड़ी कंजूस, कुछ भी यज्ञ में लगाती नहीं थी। देवदूत आए, बहुतों को पुष्प विमान में बैठा के स्वर्ग में ले गए, बाहर सबको खड़ा किया, दो दो देवदूत एक एक दो दो को ले जाने लगे उनके घर छोड़ने के लिए। अब ये देख रही मेरा नंबर नहीं आ रहा, लास्ट में इसका नंबर आया और इसको बहुत दूर ले गए तो एक चांदी का एक ही कमरा था। ये कहा सबको बड़े बड़े मकान महल, मेरे को एक ही कमरा वो भी चांदी का। कहा तुमने इतना ही माल भेजा ना, ज्यादा नहीं भेजा। तो कल्पना विजन बनाओ अपने देवलोक का, देखो आकाश में पुष्पक विमान उड़ रहे हैं सुंदर सुंदर, कोई हंस के रूप का है, कोई गरुड़ के रूप का है, अलग अलग सुंदर डिजाइन, किसी पे कमल का फूल सजा हुआ है, किसी पे कैसा, और साथ में ये भी देख लो मैं उसमें बैठी हूँ। बैठेंगे या गिर जाएंगे? बैठ जाएंगे, उसमें ज्यादा कोई झंझट नहीं, बटन दबाया इशारों में, अभिज्ञान यही पहुंच रहा है, इशारों से चलेगा, इशारों से नीचे आएगा, तार तो वहां होंगे नहीं बिजली के जो डर हो, कहीं भी उतर जाएगा आराम से। और देखो देवता घूम रहे हैं, बच्चे बड़े देव लोग विचरण कर रहे हैं देवगण। सतयुग का एक सीन सामने लाओ, प्रकृति का बहुत सुंदर यह है, हर एक के घर में फूल, बगीचे, वैरायटी, सुगंधित हवा भी अगर बह रही है उसमें भी सुगंध, पानी भी बहुत टेस्टी, पानी को तो सुगंधित होने की जरूरत नहीं, नहीं तो फियान जाएगा, पर बहुत स्वीट टेस्टी। सीन बनाओ ऐसा, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज, क्योंकि आज कोई सौंदर्य है नहीं हमारे सामने, रंग बिरंगे फूल हैं, सुगंधित फूल हैं, डर कुछ नहीं है। और फिर अपने को देखो वहां, अपने परिवार को देखो, मैं देव रूप में हूं, चमकता दे, ये बाबा ने शब्द बोला, कंचन काया है वहां, सबके चेहरों पर तेज है, नूर टपकता है, सभी संपूर्ण सुखी, अथाह धन संपदा है, गिनती की बात ही नहीं। लाएंगे सामने, बनाओ, जो विदेश के हैं दुबई उसके आगे कुछ नहीं, लंदन भी कुछ नहीं, अमेरिका फीका, क्योंकि वाइब्रेशंस नहीं है। सुंदरता हो सकती है, धन हो सकता है, यहाँ का धन कुछ नहीं है वहां के धन की भेंट में, लेकिन वाइब्रेशंस नहीं है, आनंद नहीं है, और वहां क्या होगा, परम आनंद, अथा असीम प्यार आपस में एक दूसरे से। ये जो कलयुग में चल रहा है वो कुछ भी नहीं, नफरत, वैर भाव, स्वार्थ, नथिंग, ऐसी दुनिया का सीन सामने लाया करे रोज एक बार, हो जाएगा। बाबा ने एक बहुत सुंदर टाइटल दिया हम सबको, रोज बाबा जब आते हैं तो हमारे स्वमान को जगाते हैं, तुम कौन हो, विश्व परिवर्तक, कहा विश्व परिवर्तन करने वाली आत्माओं के मन में सबके लिए क्या होना चाहिए, सुभावनाएं। इस पे ध्यान दें सभी। कलयुग के अंत में मनुष्य ने सबसे ज्यादा बिगाड़ी हैं भावनाएं। कई लोगों को तो कोई भी अच्छा नहीं लगता, सब खराब हैं। मेरे पास आते रहते हैं ऐसे लोग, कभी कभी 15 दिन में एक आएगा कोई, सभी खराब हैं। इसने मुझे तंग किया, इसने भी तंग किया, ये बहुत बुरे हैं, ये मेरे से ऐसा करते हैं। जहां दो चीजें हैं, इंग्लिश के शब्द हैं दोनों, कंपैरिजन और कंप्लेंट्स। कंपैरिजन माना तुलना, कंप्लेंट्स शिकायतें। जिसके पास ये दो हैं उसको जीवन में कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। ठीक बात है या नहीं? दूसरों को देखते रहते हैं। एक बहन आई, गुस्सा आता है। मैंने कहा छोड़ना चाहती हो? अब ये सुन के वो सोचने लगी, एक दरवाजा तो खोल दूं। ये सुन के वो सोचने लगी, सोच छोड़ना चाहती हूं क्या? मैंने कहा सच सच बताओ, अगर तुम छोड़ना चाहती हो तो मैं विधि बताऊं। अगर तुम समझती हो ये मेरे लिए खजाना है तो भाई रखो, मुझे इसमें क्या तकलीफ है। कहा नहीं, पर मेरे साथ की बहनें ऐसा ऐसा करती हैं, मुझे गुस्सा तो करना ही पड़ेगा। मैंने कहा तो करती रहो, पर बाबा मना करता है। अब ये भी याद आता है, मुझे करना पड़ेगा और बाबा मना करता है। किसकी बात माने, मुझे या बाबा? अब ये उसकी गलती है कि मुझे करना पड़ेगा, बताओ या ठीक बात है? बच्चों पे गुस्सा तो करना ही पड़ेगा, बिगड़ रहे हैं। गुस्सा करने से सुधर रहे हैं? नहीं। हम ही बिगड़ गए जब गुस्सा किया, तो वो कैसे सुधरेंगे, होगा? तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा लेके इसमें हल्का किया। मैंने कहा वो गलती कर रहे हैं, आपको उनकी गलती दिख रही है और आप गुस्सा करती हैं, बाबा कैसा देखता होगा आपको। बहुत प्यारी बच्ची मेरी, मीठी बच्ची है, देखेगा? तो गलती तुम्हारी बड़ी या उनकी बड़ी, बोलो। कोई गलती करे, हमने क्रोध किया, किसकी बड़ी गलती है? हमारी है, क्यों? क्रोध से आत्मा की बहुत शक्तियां जल गई। हो सकता है वो तो गलती करके भी मस्त हो, मौज मना रहे हो, लेकिन हमने अपनी शक्तियों को जैसे आग लगा दी अंदर से, खजानों को। खुशी का खजाना रहेगा, जला डाला। अब वो सारा दिन यही देखती है और गुस्सा करती है, न योग लगता न सेवा बढ़ती है, मजा नहीं आता। इसलिए न शिकायतें न तुलना। जिसको आगे बढ़ना है ये दोनों चीजें छोड़ देनी होंगी, क्योंकि बाबा की मुरली में बहुत गहरी बात है। संडे की मुरली में थोड़ी जोड़ता हूं इससे, कर्मातीत अति गुह्य मुरली है। भूल गए होंगे, आपको पढ़ना चाहिए इस मुरली को, कई बार पढ़ना चाहिए। पढ़ना इसलिए नहीं कि बाबा कहता मुरली पढ़ो बार बार, हम उसको समझें गहराई से, उन चीजों को रियलाइज करें और ठीक करें अपने को, क्योंकि कर्मातीत सबको होना है। यदि हम नहीं होंगे तो बोलो आगे नहीं, ये तो ठीक बात है, हम नहीं होंगे तो कौन होगा। अब यदि हम नहीं होंगे तो समय, समय के थपेड़े बड़े खतरनाक हैं। समय हमें कर्मातीत बनाएगा। देखो बाबा की एक ही बात याद दिलाता हूं, फिर हम कारण और निवारण पे आते हैं, जो प्रैक्टिकल सबको करना है। थाना मुरली में कारण निवारण, संकल्प आया, ये गहरे जो गुह्य पुरुषार्थ करते हैं सूक्ष्म, वो बहुत ध्यान देंगे। संकल्प आया, मैंने किया और बंधन बना। कर्मातीत माना बंधन मुक्त। कम से कम 10 परिभाषाएं हैं, 10 डेफिनेशन है मुरली में। मैं तो फटाफट नोट कर ली थी सब, नीचे पढ़ी भी बहुत अच्छी थी, आशा बहन ने पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। कोई कोई तो ऐसे ही पढ़ जाते, उन्हें पता नहीं चलता क्या है ये, लेकिन बहुत गुही है मुरली। मैंने किया और रिपीट करो बंधन बना। सारा दिन यही तो करते हैं हम, इसलिए कर्मों के बंधन, संबंधों के बंधन, व्यर्थ के बंधन, परिस्थितियों के बंधन, सेवाओं के बंधन, बीमारियों के बंधन, लंबी लिस्ट है या नहीं? अगर योग नहीं लगता, अगर खुशी नहीं रहती, अगर चित्त एकाग्र नहीं है, तो आत्मा कहीं ना कहीं बंधन में बंधी है। उस पे तो हम फिर यहां क्लास करेंगे, करते रहते हैं यहां। अब बाबा ने कहा था इस वर्ष में कारण शब्द को हटा दो। 3-4 बातें बोली, स्वयं का कारण, साथियों का कारण, संगठन का कारण, परिस्थितियों का कारण। स्वयं में बीमारी भी आ सकती है। देखो कहां कहां और कैसे मनुष्य कारणों के वश होता है, ऐसे समस्याओं के वश भी होता है। तो हमें समाधान स्वरूप बनना और निवारण स्वरूप बनना, हम सबने सुन लिया, लेकिन हम अब अपने को देखेंगे भी तो सही। हम सब भी तो कारण देते हैं। कारण माना सरल शब्दों में बहाने। आज तबीयत ढीली है, आज तो सोएंगे, पहले से ही मन में ठान के रखिए आज सवेरे नहीं उठेंगे। अलार्म भी लगा दिया है, लेकिन अंदर में वो भी संकल्प है आज उठेंगे नहीं, अलार्म बजा और वही संकल्प आएगा तबीयत खराब है सो जाओ, होगा या नहीं? और संकल्प कर लें तबीयत खराब है तो क्या है, उठेंगे, बाबा की दुआएं मिलेंगी, बाबा की शक्तियां मिलेंगी, बीमारी ठीक हो जाएंगी, सबसे बड़ा सुप्रीम सर्जन तो वो है, तो उठ जाएंगे, बीमारी बंधन नहीं बनेगी। बाबा की मुरलियों में बहुत आ रहा है, इसमें भी है, बीमारियां तो होंगी, अंतिम समय है, लेकिन बीमारियों का चिंतन करते रहना, उससे अपनी स्थिति को बिगाड़ लेना, बीमारी का स्वरूप बना देना अपने को, उसका ही वर्णन करना, ये है बंधन मुक्त स्थिति। लेकिन कर्म भोग को कर्म योग के द्वारा, यानी उसमें भी योग करें, अभ्यास करें, मैं आत्मा हूं ये मेरा शरीर है, पार कर लेना, ये है कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं कि बीमारी आएंगी नहीं। ब्रह्मा बाबा 2 दिन 17-18 दोनों दिन बाबा की तबीयत ढीली थी। 18 को तो बाबा सवेरे क्लास में भी नहीं आए थे, एक ही बार हुआ हिस्ट्री में जब बाबा क्लास में ना आए हों, तबीयत ढीली थी। लेकिन बाबा शब्द क्या बोलूं मैं, एक अपार नशे में थे। मुझे तो बाबा क्यों याद रहते हैं सब, विश्वतन दादा थे और भाई थे, उन्होंने बाबा कहा बाबा आपको दर्द होता है डॉक्टर को बुलाएं सवेरे। क्या उत्तर था बाबा का आप समझ सकते हैं, कर्म भोग के समय स्थिति हो तो ऐसी हो। बच्चे बाबा तो रूहानी सर्जन से बात कर रहा है, डॉक्टर क्या करेगा, असीम नशा, देह में पेन होते भी उसकी फीलिंग से ऊपर, ये कर्मातीत अवस्था। किसी को ज्यादा फील ही नहीं होने दिया, सारा दिन काम किया 18 जनवरी, उसे पता था आज जाना है, पता था या नहीं बाबा को, पता था, बाबा ने अश्वरत्नों की देह छोड़ने की विधि का वर्णन किया है। उनका देह अचानक नहीं छूटेगा। देखिए देह छूटने के कई स्वरूप हैं। किसी का देह हॉस्पिटल में कष्ट पाते हुए छूटता है, किसी का 5-7 साल कष्ट पाकर हॉस्पिटलों में छूटता है, किसी का रात को चुपचाप छूट जाता है, कोई कष्ट नहीं, मजे से सोए थे, सवेरे हैं ही नहीं, ये भी अच्छा है। लेकिन जो अश्रतन है उनका शरीर छूटेगा स्मृति स्वरूप होकर, वो शरीर छोड़ेंगे, छूटेगा नहीं, समझ गए ना अंतर। इच्छा मृत्यु होगी उनकी, वो छोड़ेंगे स्मृति स्वरूप होकर। बाबा से बातें करते हुए, बाबा आ रहे हैं आपके पास, ये देह त्याग कर पाठ पूरा हुआ। तो कर्म भोग में भी ऐसी स्थिति, यानी कर्म भोग हमारी स्थिति को बिगाड़े नहीं। इम्पोर्टेंट चीज सभी को है। कलयुग के अंत में जो पुरानी आत्माएं वो संपूर्ण स्वस्थ नहीं मिलेंगी, कुछ ना कुछ होगा। स्वस्थ वो हैं जो एक ही जन्म ले रहे हैं, अभी उतरे हैं परम धाम से, वो स्वस्थ हैं। बाकी सब ने अच्छे अच्छे किए ना कर्म, उनका फल देह से जो किया है देह से ही भुगत लेते हैं। तो कारण नहीं रखना है, ये तो मैंने एक बात बताई, क्योंकि ये सबके मन में आ जाता है, मेरे में भी आ जाता है, इसलिए मैं भी इसको समाप्त किया। और अपने क्या कारण होते हैं, कुछ अपने संस्कारों के कारण हैं, संस्कार कारण हैं पुरुषार्थ को न बढ़ने देने के, फीलिंग आने का संस्कार, विशेष ध्यान देंगे, ज्यादा सोचने का संस्कार, कहीं ये तो कारण नहीं। आज एक टीचर बहन ने बात कराई, मेरी बहन को कैंसर हो गया, वो बहुत दुखी है। मैंने उससे बात की, मैं भी हॉस्पिटल गया था, मेरा लक्ष्य था उसमें उमंग भरना। मैंने पूछा किसे कैंसर है, पहला उत्तर दे दिया उसने, अच्छा मेरे शरीर को है। मैंने कहा तुम्हें तो नहीं है ना, नहीं मुझे नहीं है। मैंने कहा चलो पहली बात बहुत सुंदर हो गई, जो बात मुझे उसे बतानी थी वो उसने ही कह दी। मैंने उसमें उमंग भरा, तुम्हें भूलना पड़ेगा कि तुम्हारी मृत्यु होगी। अब कैंसर ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग दिन गिनने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा 6 मास, 15 दिन तो हो गए, 5.5 बचे हैं, और 15 दिन हो गए, 5 मास बचे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है मनुष्य की। मैंने उसको पक्का कराया, संकल्प कर लो मुझे मरना ही नहीं है, बाबा के साथ काम करना है, अभी मन में खुशी ले आओ अपने, क्योंकि मैंने ये कराया। हमारे यहाँ कई कन्याएं आती हैं, छोटी आयु की कैंसर हो गया, मैं उनमें उमंग भर देता हूँ, है ही नहीं तुम्हें, भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, आया है जाएगा, हिसाब किताब चुकत हुआ ठीक होके जा रही है। इसलिए अपने मन को निर्बल नहीं करना है। ज्यादा सोचने की आदत ये बड़ा कारण बन गया है पुरुषार्थहीनता का। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, संकल्प पता नहीं कहा ना बाबा ने, हिम्मत गई, कमजोरी ने प्रवेश कर लिया, हमने माया का आह्वान कर लिया। संकल्प कर दें आप, पावरफुल संकल्प है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, जो हम चाहेंगे वही होगा, थोड़ा पावरफुल है। कई सोचेंगे ड्रामा में जो वो होगा हम चाहेंगे थोड़ा ही होगा, हम तो ये भी चाहते हैं वो भी चाहते हैं, ऐसा थोड़ा ही होगा। ये सब सोचने वालों का नहीं होगा, जो एक ही संकल्प रखते हैं, मेरे साथ बाबा है, मैं पूर्वज हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, वही होगा जो हम चाहेंगे, प्रयोग करके देखना इसके जीवन में। लेकिन होगा तब जब निगेटिव संकल्प नहीं होंगे। कारण को हटाओ, बच्चे पुरुषार्थ नहीं करने देते। अब माताओं की समस्या तो है, एक माता को 2 छोटे बच्चे, माता जैसे योग में बैठे बच्चों को बड़ा मजा आए, मम्मी देखो कैसे बैठी, और बस कोई यहाँ चढ़े बाल खींचे कान खींचे, उनको मजा आ रहा, अब वो उन्हें हटा रही, फेंक रही, उनको मजा आ रहा। कहा ये मुझे कुछ नहीं करने देते, कैसे पैदा हो गए बिच्छू टिंडन, ये ना होते तो अच्छा होता। मैंने कहा तुमने ही तो इनका आह्वान किया था, ना होते कैसे भला। अभी इससे मुक्त रहकर, अभी देखो वो क्या मैंने उसको सिखाया, वो खेलकूद कर रहे ना आपके ऊपर भी, मस्त रहो, योग लगाते रहो, बाबा की किरणें आ रही हैं, आपको मजा आएगा। व्यर्थ संकल्प तो चलेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे चलने नहीं देंगे, होगा या नहीं। अकेली बैठेंगी तो व्यर्थ संकल्प चलेंगे, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं शरीर पे ही, संकल्प नहीं चलेंगे अगर वो अभ्यास उसने शुरू किया और सफल हो गई। तो केवल संकल्प बदलने हैं हमें, संकल्पों को बदलें। कारण देते रहेंगे तो बाबा ने पीछे मुरली में कह दिया था कड़ा शब्द, जो कारण देंगे वे कारागार में चले जाएंगे, धर्मराज की कारागार जेल में। तो बाबा हम सभी को स्ट्रांग करना चाहता है ना, कि जिन्हें जो कुछ करना है वो करना है। मैं तो माताओं की ताकत देखकर खुश होता हूँ, आती रहती है मेरे पास, इस ग्रुप में भी आई। पति ने बिल्कुल बैन लगा दिया था, जाना नहीं है, मैं तो आ गई, फोन करता है आना नहीं है, मैं जाऊंगी भी, देखो है ना ताकत। मैंने कहा तुम सिर्फ शक्ति हो, डरो नहीं। तो कारण रोकते हैं क्या मनुष्य को, अपनी कमजोर संकल्प। तीन चार माताएं आई इस बार ऐसी, उन्होंने ये बातें बताई, हमें आने ही नहीं दे रहे थे, 3 साल हो गए थे उनकी रिक्वेस्ट करते। मैंने कहा मुझे तो जाना है, तुम जो चाहे करो, पैसा भी नहीं दे रहे थे। मैंने इधर उधर से इकट्ठा किया और मैं तो आ गई हूं। मैंने कहा आ गई तो बाबा का बल मिलेगा ना तुम्हें, अब संकल्प करो। मैं एक बहुत अच्छा संकल्प सिखा देता हूं जिसके रिजल्ट बहुत गुड है। मैंने कहा संकल्प करो, मैं इस देवी हूं, शिव शक्ति हूं, जब घर जाऊंगी तो मेरा पति मेरा स्वागत करेगा, गड़बड़ से नहीं, अच्छा स्वागत, फूलों से। होता है ऐसे, यहीं से डरते डरते जाएंगे, जाएंगे तो पति लड़ेगा, जाते ही पता नहीं घुसने देगा या नहीं, तो वही होगा। ये संकल्पों की गति को, उनके प्रभाव को सभी समझ लें। मैंने कन्याओं से करा, बहुत डर रही थी, आ तो गए, जाएंगे तो ये होगा वो होगा, मैंने उनको संकल्प दिए ये होगा, वही हुआ। हमारे संकल्पों में बहुत ताकत है, इसलिए किसी भी कमजोर संकल्प को कारण नहीं बनने देना है। साथी, मेरा साथी तो बुरा बोलता है, मुझे योग लगता ही नहीं, ये हटे तो मैं योगी बनूं, वो हटेगा नहीं, उससे हिसाब किताब है, वो तो जीवन भर जिधर आप जाएंगे उधर ही चलेगा। भाई बहने सोच ले, बच्चे हैं आपके साथी हैं ना वो भी, आप सोचते हैं ये सुधर जाएं, ये जॉब पे चले जाएं, ये अलग हमसे रहने लगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा, ये संभव नहीं है। जो मनुष्य हर परिस्थिति में रहकर अच्छा पुरुषार्थ कर सकता है, परिस्थिति उसके आगे नमन करेंगी, वो परिस्थितियों से भारी हो गया, उस पर भारी पड़ेगा, ये सीखना है सबको। गहरी बात है थोड़ी, बाबा ने बोला था तब से मुझे याद है, बात 45 साल पहले की होगी। हर परिस्थिति में जो पुरुषार्थी अपनी उन्नति का मार्ग निकाल ले, वही सच्चा पुरुषार्थी है, तीव्र पुरुषार्थी है। हर परिस्थिति में अपनी उन्नति का मार्ग निकालना, अपने को शांत करके अच्छे अभ्यास करना। आपके घर में मेहमान आए हैं, 4-5 आ गए हैं, आपके प्रियजन हैं, आपको काम भी करना, उनकी खातिरी करनी है, उनका सब कुछ करना है, ऐसे में प्राय ज्ञान योग भूल जाता है, छूट जाता है। लेकिन आप एक संकल्प रख लो, मैं इनका सब कुछ करते हुए ये अभ्यास करूंगी, मैं एक महान आत्मा हूं, और इसका रिजल्ट आप अलग देखेंगे, उन पर आपके वाइब्रेशंस का बहुत सुंदर इफेक्ट होगा। आप जरा सा संकल्प कर लो 1-2 बार, उनसे मिलते जुलते, हंसते हंसाते बहलाते, ये सब भी देवकुल की आत्माएं हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगी, और मैं महान आत्मा हूं, वाइब्रेशंस लेकर जाएंगे आपके घर से। तो कुछ प्रैक्टिस हम हर परिस्थिति में, हर मेले झमेले में कर सकते हैं, करने की प्लानिंग बनाएं। समझ रहे तुम भी? प्लान, पढ़ना है, इतने नंबर लाने हैं, प्लान करते हैं ना, ऐसे बिना पढ़े ही आ जाएंगे। प्लानिंग करें अपने पुरुषार्थ की, प्लानिंग करेंगे अपने योग अभ्यास की। इस क्रम में ये अभ्यास किया जा सकता है। क्लियर है ना बात? तो कारण को आगे नहीं रखेंगे, ये चीज ठीक हो तो हम ये पुरुषार्थ करें, तो समझ लें वो चीज कभी ठीक नहीं होगी। ठीक हमें करनी है, हम अपनी स्थिति को ठीक करेंगे तब वो चीज ठीक होगी। ये सिद्धांत सभी समझ लें, बाबा ने कह दिया है स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां श्रेष्ठ हो जाएंगी, बदल जाएंगी। तो परिस्थितियों को भी दीवार बनने नहीं देना है। सब देख लो मेरे सामने क्या क्या परिस्थिति रहती है, जॉब में गड़बड़ हो रही है, काम धंधों में गड़बड़ हो रही है, परिवारों में विघ्न आने लगे हैं, ये आजकल बहुत चल रहा है। मैं एक बात बहुत साल से कह रहा हूं और आज फिर रिपीट कर देता हूं, मैं हर क्लास में रिपीट करना चाहता हूं उसे, सभी तो उसको समझ नहीं पाते हैं। अब वो समय आ गया है इस सृष्टि चक्र में जब सभी के जन्म जन्म के विकर्म और विकार जागृत हो रहे हैं। होंगे नहीं? अब बाबा ने कह दिया था होंगे, ऐसा समय आएगा। अब वो समय आ गया है, हो रहे हैं, इसलिए बहुतों में इम्प्योरिटी जग रही है, बहुतों के सामने विघ्न आ रहे हैं, बहुतों को ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति बन रही है। हम सब ठीक ठाक थे, हम सोचते ही नहीं थे, हमारा योग 10 साल फर्स्ट क्लास रहा, अभी 3 माह से बिल्कुल टूट गया, लगता ही नहीं। ये बहुतों के साथ हो रहा, कई आए इस ग्रुप में, मेरे साथ भाई भी आए, बहनें भी आई। ये सब क्या हो रहा है? विकर्म और विकार अंदर में जागृत हो रहे हैं, जो आत्मा में, ब्रेन में, मन में, इसे अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं मनोवैज्ञानिक, उसमें सोए हुए थे वो अब जग गए हैं बाहर की हवा के कारण। काल चक्र उस समय पर पहुंच गया, सुई वहां पहुंच गई है इस कारण से, इसलिए घबराना नहीं है। विघ्न आ रहे इस कारण से तो विघ्नों को नष्ट करने का योग करना है, विघ्न आ रहे इसलिए योग ही छूट गया तो विघ्न बढ़ेंगे। मैं विघ्न विनाशक हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे योग करना है। इम्प्योरिटी को भी योग बल से समाप्त करना है। किसी के अंदर कुछ भी, बाबा ने कह दिया था, जो भी संस्कार अंश मात्र में भी रह जाएगा वो वंश बन जाएगा, हवा तेज चलेगी, आग भड़क जाएगी, ये अब होने लगा है और ये तीव्र गति से बुरी स्थिति लेता जाएगा। इसका मानसिक इफेक्ट लगभग सभी लोगों पर, उन आत्माओं को छोड़ के जिनके एक दो जन्म है और जो पुरानी आत्माएं हैं उन सब पर आ जाएगा। इसलिए अपने साथ कुछ अच्छे पुरुषार्थ के पॉइंट लेकर चलना है, कुछ नियम बनाकर चलना है अपना। मैं होमवर्क देता हूं आपकी क्लास के लिए, 50 वर्ष की अव्यक्त पालना के सुंदर 50 पॉइंट निकलवा लेना, हो सका तो मैं भी आ जाता हूं एक दिन। जो बाबा ने 50 गहरी बातें कही हैं पुरुषार्थ करने के लिए है, वो निकालनी है। पढ़ेंगे भी थोड़ा थोड़ा, पढ़ेंगे तो निकलती जाएंगे, और उन पे काम करना और कराना है। अब तो हमने इस पार्क में भी इस बार यही टॉपिक लिया है, 50 वर्ष की पालना का रिटर्न। टर्न करो अपने को रिटर्न देने के लिए, रिटर्न माना टर्न, टर्न माना अपने को परिवर्तन। तो 5 तारीख से मीटिंग है, उसमें भी हम बहुत कुछ निकाल लेंगे, तभी यहां भी एक रख लेना। तो सभी बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, अंतिम समय, अंतिम अवसर श्रेष्ठ पुरुषार्थ का है, क्योंकि जब ये बहुत जागृत हो जाएंगे फिर दिमाग मन बुद्धि पुरुषार्थ कर नहीं देगा, एकाग्रता होगी नहीं। तो इस मुरली से आप कुछ ना कुछ सीख लेंगे, कारण को हटा देंगे कोई भी जो आपको अपने जीवन में दिखता हो, और अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति। अभी योग के साथ देवलोक में चलेंगे, मगन हो जाएं अकेले बिल्कुल स्वर्ग का नजारा और अपने देव स्वरूप को देखेंगे।
प्रभु का ध्यान।